ॐ नमः सिद्धेश्य ॐ नमः सिद्धेश्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूवृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमास्वामी रचित तत्वार सूत्र ग्रंथ का जो दूसरा अध्याय है, उसमें हम जीव के असाधारण भावों की चर्चा कर रहे हैं। हमने सूत्र पढ़ा था, औपशमिक शायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वम औदयिक पारिणामिकौ च। हमने जीव के पांच असाधारण भावों की चर्चा की थी। सुबह हमारा विषय चला था, ये अपना दूसरा लेक्चर है ना। पांच भाव कौन कौन से देखे हमने? औपशमिक, शायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। उसमें से हमने पांच बातें देखी थी कि सभी जीवों को पारिणामिक भाव तो होता ही है, वो उसका स्वभाव भाव है। कोई भी जीव स्वभाव भाव से रहित नहीं होते, वो संसारी हो या मुक्त हो, पारिणामिक भाव तो सबके पाए जाते हैं। दूसरी बात देखी थी कि सभी संसारी जीवों के औदयिक भाव पाया जाता है। तीसरी बात देखी थी कि सभी छद्मस्थों के क्षौपशमिक भाव पाया जाता है। क्षायिक भाव की बात देखी थी कि क्षायिक भावों में तो सम्यक्त्व का जो क्षायिक भाव है, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र और क्षायिक ज्ञान आदि, तो वो अलग अलग गुणस्थानों में प्रकट होते हैं। और जो औपशमिक भाव है, तो जब सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, धर्म की शुरुआत होती है, तो औपशमिक सम्यक्त्व से शुरू होती है। तो इनका ये क्रम क्यों दिया है? तो हम देख सकते हैं कि सबसे कम जो संख्या है वो औपशमिक भाव वालों की है, क्योंकि औपशमिक भाव में कौन कौन से भाव होते हैं? तो औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व तो जो सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है, मिथ्यात्व में से दर्शन मोह अनंतानुबंधी का उपशम करके जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तब उसको औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। सम्यक्त्व भी तीन प्रकार का होता है, क्षौपशम सम्यक्त्व भी होता है और क्षायिक सम्यक्त्व भी होता है। परंतु यहां बात क्या की, तो मिथ्यात्व में से कर्मों का उपशम करके जो सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है उसको औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कैसे प्राप्त होता है? तो कोई औपशमिक सम्यक दृष्टि है, उसका उपशम तो समाप्त हुए परंतु सम्यक्त्व चालू रहे, तो औपशमिक में से वो क्षौपशमिक होता है। या दूसरा रास्ता कौन सा है कि एक बार जिसने औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया है और उसके मिथ्यात्व नाम के कर्म में से तीन प्रकृतियां तैयार हुई, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, वो फिर मिथ्यात्व गुणस्थान में आता है, तो फिर दोबारा अभी कर्मों का क्षौपशम करके, ये क्षौपशम क्या है, कैसे करता है, वो तो गुणस्थानों में चर्चा आएगी। तो वो सादी मिथ्या दृष्टि, सादी क्यों कहना, मिथ्या दृष्टि दो प्रकार के है, एक अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि से ही जिसने अभी मिथ्यात्व के बाहर अन्य गुणस्थान नहीं पाया है उसको अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और सादी मिथ्या दृष्टि यानी उसके मिथ्यात्व को सादी यानी आदि है, शुरुआत है। इसका अर्थ क्या है कि वो सम्यक्त्व में से मिथ्यात्व में आया हुआ है। ऐसे जीव की सत्ता में दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां हैं, उनमें से सम्यक प्रकृति का उदय होता है और अन्य दो प्रकृतियां सत्ता में पड़ी रहती है, उदय नहीं होता, तब उसको कहते हैं, इसको क्षायोपशम सम्यक्त्व है। तो ये दूसरा प्रकार हुआ, जो क्षायिक सम्यक्त्व है, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि, दर्शन मुनि की तीन और अनंतानुबंधी चार इन सब का सत्ता में से समूल नाश करता है तो उसको क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। ये तीन प्रकार के सम्यक्त्व में से यहां जो हम औपशमिक भाव में औपशमिक सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं तो औपशमिक सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या सबसे कम है औपशमिक भाव वाले, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। औपशमिक चारित्र किसे कहना, तो चारित्र मोहनीय के उपशम जिसने किया है वो मिथ्यात्व में से तो नहीं कर सकता है। तो जो मुनिराज है छठे सातवें गुणस्थानवर्ती वो चारित्र मोहनीय का उपशम करते हुए उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तब उनको कहते हैं कि ये औपशमिक चारित्र है। तो उसका विस्तार हम बाद में देखेंगे, अभी तो हमारा जो औपशमिक भाव चल रहा है ऐसे जीवों की संख्या गिनी चुनी है, अल्प है। अब कहते हैं जो सबसे कम संख्या औपशमिक भावों की है, भाव वालों की है, अब उनसे ज्यादा क्षायिक भाव वाले हैं। क्योंकि क्षायिक भाव वाले जीव कहां कहां पाए जाते हैं तो हमने देखा क्षायिक सम्यक्त्व वाले तो चौथे गुणस्थान से है, तो उनका क्षायिक सम्यक्त्व अभी हमारी तो गुणस्थानों की सब चर्चा हुई थी, तो प्रश्न ऐसा है क्षायिक सम्यक दृष्टि जो जीव है वो कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक पाए जाते हैं। हाँ सरला बेन, सुबह हमने सभी गुणस्थानों के नाम देखे थे ना, हमें नाम की बात नहीं है, आप संख्या कह दे उसका नंबर कह दो तो भी चलेगा। मेरा प्रश्न ऐसा है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है चौथे गुणस्थान से हो सकता है, हमने देखा था ना, तो कौन कौन से गुणस्थान वाले जीवों को क्षायिक सम्यक दर्शन है ऐसा आप कह सकते हो, यानी क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ जीवों के कौन कौन से गुणस्थान है।
एक बार सम्यक दर्शन हुआ तो 14 तक,
हाँ
13
तक, 14वें को नहीं होगा क्षायिक सम्यक तो 14वें में क्या होगा, सम्यक तो छूट जाएगा के रहेगा, केवल ज्ञान होने पर सम्यक तो रहेगा के छूट जाएगा मालूम नहीं। नहीं नहीं पक्का निर्णय करना पड़ेगा, देखो हमें भगवान का भी ज्ञान पूर्ण हुआ, हम सम्यक्त्व की बात कर रहे हैं। हाँ पक्का ना, हाँ नहीं तो सम्यक दर्शन प्राप्त करे और केवल ज्ञान होने पर छूट जावे। तो सिद्धों में क्या होता है, सम्यक्त्व तो चालू रहता है क्या, क्या होता है, हाँ सम्यक्त्व रहता है। तो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर 14वें गुणस्थान तक तो क्षायिक सम्यक्त्व तो है ही है, वो सिद्ध होने पर भी क्षायिक सम्यक्त्व तो चालू ही रहता है। हाँ तो इसलिए यहां कहते हैं उनकी क्षायिक भाव वालों की संख्या तो औपशमिक भाव वालों से ज्यादा है। अब कहते क्षायोपशमिक भाव वाले कितने जीव है, तो क्षायोपशमिक भाव वाले हम कौन से जीव देखे थे, याद है आपको, आपने लिखा है क्षायोपशमिक भाव कहां से कहां तक पाया जाता है, कौन से गुणस्थानों में देखेंगे। हाँ आपने लिखा बराबर है, हाँ पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक, क्योंकि अज्ञान हो या ज्ञान हो तीन प्रकार का मतिश्रुत अवधि ज्ञान जो कु यानी मिथ्या ज्ञान हो या सम्यक ज्ञान हो 12वें गुणस्थान तक तो छद्मस्थ है ना, आवरण वाले जीव है, तो उनके क्षौपशमिक ज्ञान होता है, क्षौपशमिक दर्शन होता है, क्षौपशमिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य होता है, तो ये सारे क्षौपशमिक भाव वहां पाए जाते हैं, तो उनकी संख्या क्षायिक भाव वालों से ज्यादा है। देखो क्षायिक भाव वालों में मेजॉरिटी किसकी है, सिद्धों की है ना, सिद्ध तो अनंत हुए हैं, और क्षायोपशमिक भाव वालों में हम सिद्धों से भी अनंत गुणे देखे जीव, तो संसारी जीव है वो सिद्धों से अनंत गुणे है कि नहीं है। आपने सुना होगा एक निगोद शरीर में इतने अनंत जीव है कि जो सिद्ध हुए हैं अभी तक, आज तक अनंत जीव सिद्ध हुए हैं, उनकी जो अनंत संख्या है उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद के शरीर में है, और ऐसे निगोद के शरीर इस विश्व में असंख्यात है, शरीर हो जीव तो अनंत अनंत है, शरीरों की बात है। तो ये सारे निगोदों को कौन सा भाव होगा, निगोद जीवों को कौन सा भाव होगा, क्षावश्रमिक भाव होगा क्या, औपश्रमिक होगा कि क्षायिक होगा कि क्या है? हाँ, क्षावश्रमिक औदयिक तो है ही है, पारिणामिक भी है, परंतु हम क्षावश्रमिक भाव की चर्चा कर रहे हैं ना। तो निगोदों को इसमें से कौन सा क्षावश्रमिक भाव है, हमने सुबह बात की थी ना, कौन सा ज्ञान है? हम ऐसा देखते हैं, निगोद जीवों को ज्ञान कौन सा है, बहुत कौन है पर कौन सा है, कुमति और कुश्रुता, और दर्शन कौन सा है, अचक्षु दर्शन, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ज्ञान है तो उनके अचक्षु दर्शन है, और फिर दान लाभ भोग उपभोग वीर्य का भी हीन रूप से परिणमन चल रहा है, उसका भी क्षावश्रमिक भाव है। इस तरह से हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो उनकी संख्या क्षायिक भाव वालों से ज्यादा है। अब जो हम देखते हैं कि औदयिक वाले, एक क्षावश्रमिक भाव वाले तो हमने बारहवें गुणस्थान तक ही देखे थे, इन एडिशन औदयिक भाव वाले तेरहवें गुणस्थान वाले और चौदहवें गुणस्थान वाले उसमें ऐड कर दो तो औदयिक भाव वालों की संख्या है ना। औदयिक भाव तो पहले गुणस्थान से लेकर चौदहवें तक है, क्योंकि चौदहवें गुणस्थान वाले जो अयोग केवली है वे भी अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, तो उनके असिद्धत्व भाव है, और मनुष्य गति का उदय चल रहा है तो गति औदयिक भाव भी उनके पाया जाता है। और पारिणामिक भाव वाले जीव कितने हैं, पूर्ण जीव राशि, पूर्ण जीव राशि वाला जो अनंत है, सभी अनंत ही है ना, फिर भी एक एक अनंत के लिए हम नाम देना चाहते हैं, ये कौन सा वाला अनंत है, तो पूर्ण जीव राशि लेना, क्योंकि पारिणामिक भाव के बिना कोई भी जीव नहीं है। इन अदर लैंग्वेज सभी जीवों में पारिणामिक भाव पाया जाता है। सुबह हमने ये भी देखा था कि सिद्धों में कौन कौन से भाव है, पारिणामिक भाव तो है ही है, इन एडिशन कौन सा होगा। देखो पारिणामिक भाव तो स्वभाव भाव है, तो सिद्धों में पर्याय है कि नहीं है, ये जो अन्य चार भाव है ना, उपशमिक क्षायिक क्षावश्रमिक और औदयिक, ये पर्याय रूप भाव है, तो सिद्धों के भी पर्याय तो होगी ही होगी, नहीं समझे क्या लगे, प्रत्येक जीव के पास स्वभाव तो है ही है, तो पर्याय भी चल रही है ना, हरेक द्रव्य की पर्याय चल रही है, तो ये चारों भाव कैसे है, पर्याय रूप भाव है। तो सिद्ध भगवान को भी पारिणामिक भाव के साथ साथ पर्याय वाला कोई तो भाव होगा ना वहां पर, तो क्षायिक भाव है, क्योंकि उनके कोई औदयिक भाव नहीं, कर्म है ही नहीं तो औदयिक भाव का सवाल ही नहीं है, और अन्य भी भाव होने का कोई सवाल नहीं है। ख्याल में आता है, नहीं समझा तो फिर पूछ लेना कि ऐसा आप क्यों कह रहे हो। हाँ देखो देखो, आपका प्रश्न है बहन का कि सिद्ध तो मुक्त हुए हैं तो उनके पर्याय रूप भाव कैसे होगा, तो सिद्ध कौन सा द्रव्य है, जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य में अनंत गुण है, तो उनमें सामान्य गुण होगे कि नहीं होगे, हाँ सामान्य गुण होगा ना, तो उनमें उत्पाद व्यय और ध्रुवता है कि नहीं है, अभी उत्पाद व्यय की बात छोड़ो, उनमें अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व गुण है कि नहीं। द्रव्यत्व गुण क्या बताता है, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य यानी पर्याय उसकी चलती है, और द्रव्यत्व गुण बताता है कि यह पर्याय निरंतर हर समय चलती है, हर समय परिणमन होता है, तो परिणमन होना ये द्रव्य का स्वभाव है, तो सिद्ध होने पर यह स्वभाव मिटेगा के रहेगा, हाँ रहेगा, तो सिद्धों में पर्याय होगी कि नहीं होगी, कौन सी होगी, हर समय केवलयान 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 केवलयान, नया 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 नया, एक एक समय वाला चलेगा ना वहां, तो सिद्धों के भी पर्याय होती है, तो सिद्धों को भी ये पर्याय रूप भाव होगा, तो उसमें हमने देखा कौन सा होगा, तो क्षायिक भाव होगा। सिद्धों के दो भाव, पारिणामिक भाव तो है ही है, उसके साथ पर्याय भी है ही, तो उसमें क्षायिक भाव होगा। अरिहंतों में हमने देखा था पारिणामिक भाव के साथ क्षायिक भाव तो है ही है, और उसके साथ और एक औदयिक भाव भी वहां पर होगा, जो हमने गति औदयिक भाव और असिद्धत्व देखा था। वो बारहवें गुणस्थान के वहां पर पारिणामिक बारहवें गुणस्थान में पारिणामिक भी है, औदयिक भी है, क्षायिक भी है, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त के बिना और क्षायिक चारित्र के बिना बारहवा गुणस्थान कैसे, परंतु अभी क्षायिक ज्ञान नहीं है, अभी क्षायोपशमिक ज्ञान है, तो क्षायोपशमिक भाव भी है वहां पर, क्षायिक भी है और क्षायोपशमिक भी है। और औपशमिक भाव किसके होता है, औपशमिक सम्यक दृष्टि के भी होता है और औपशमिक चारित्र वाले के भी होता है। ग्यारहवें गुणस्थान में अभी आपका ये बात हुई नहीं है, परंतु ऐसा कोई जीव है कि जिसको पांचों ही भाव होते हैं? रजनी भाई विचार करना, सब लोग, ऐसा कोई जीव होगा क्या कि जिसके सभी भाव है? पारिणामिक तो सबको होते हैं, औदयिक भी होने में कोई हमारा हर्जा तो है ही नहीं है, क्षायोपशमिक और क्षायिक एक साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते है? सम्यक्त्व का क्षायिक भाव और ज्ञान का क्षायोपशमिक हो सकता है ना? हो सकता है। तो कोई ऐसा जीव होगा कि जिसके औपशमिक भी भाव है साथ साथ? हाँ, देखिए देखिए, बहुत अच्छा बताया आपने। जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है ना, क्षायिक सम्यक दृष्टि ने, उसका सम्यक्त्व तो क्षायिक है, परंतु उसने उपशम श्रेणी चढ़ी,
चारित्र उपशम है।
हाँ, तो चारित्र का चारित्र मोह का उपशम करते करते वो ग्यारहवें गुणस्थान में पहुंचा है, तो उसका चारित्र कैसा होगा? उपशम चारित्र। तो उसमें पांच भाव कैसे लगेंगे उसके? क्षायिक तो सम्यक्त्व है, औपशमिक चारित्र है, क्षाउपशमिक उसके ज्ञान दर्शन आदि क्षाउपशमिक भाव चल रहे हैं, और उसके औदयिक भाव तो है ही है, और पारिणामिक भाव तो सबके पाया जाता है। तो ग्यारहवें गुणस्थान वाला क्षायिक सम्यक दृष्टि ग्यारहवें गुणस्थान में आता है तो उसके पांचों ही भाव पाए जाते हैं। बारहवें को लेना कि नहीं लेना? हाँ, फिर से देखो देखो, हमने ऐसा यहाँ विचार किया कि कोई ऐसा जीव हो सकता है कि उसको पांचों ही भाव हो सकते हैं, तो औपशमिक सम्यक के साथ तो पांच भाव हो ही नहीं सकते, बरोबर? तो हम औपशमिक चारित्र की बात उठाते हैं। ग्यारहवें गुणस्थान वाला जीव चारित्र मोह का उसने उपशम किया है, तो ये कौन कर सकता है? या तो द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि जीव, या क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, दर्शन मोहनीय का क्षय किया है, परंतु चारित्र मोहनीय है उसके, तो चारित्र मोहनीय का उपशम करते करते वो श्रेणी चढ़ता है। श्रेणी चढ़ना का अर्थ होता है आठवां, नौवां, दसवां गुणस्थान, और फिर ग्यारहवें में चला जाता है, तो उसको औपशमिक भाव है। कौन सा औपशमिक भाव है? औपशमिक चारित्र। क्षायिक सम्यक तो है ही है, तो क्षायिक भाव भी उसके हैं। सभी क्षायिक भाव नहीं है उसके, कोई तो कोई है ना, क्षायिक ज्ञान नहीं है उसके। क्षायिक कौन सा भाव है? सम्यक्त्व है। क्षायोपशमिक भाव कौन सा है? तो ज्ञान दर्शन और वीर्य आदि जो है वो उसके क्षायोपशमिक भाव है। औदयिक भाव तो सब चल ही रहे अभी, क्योंकि वो ग्यारहवें गुणस्थान वाला है, उसके योग्य वहां के कर्मों के उदय चल रहे हैं, और उसका औदयिक भाव भी है ग्यारहवें गुणस्थान में। और पारिणामिक भाव तो सभी जीवों में होता है, वो तो स्वभाव भाव है। इस तरह ग्यारहवें गुणस्थान वाला क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, उसके पांचों ही भाव एक साथ पाए जाएंगे, ये बात अपने देखिए।
सम्यक दृष्टि जीव सब श्रेणी चढ़ता है,
क्षायिक सम्यक, आपका प्रश्न है क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव क्या क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ता? देखो, ये कोई जीव जानबूझकर मुझे क्षपक श्रेणी चढ़नी है के उपशम श्रेणी चढ़नी है, ऐसा उसको कोई नियम नहीं होता, और हम सोच समझकर चढ़ नहीं सकते।
रिजर्वेशन नहीं कराता इसका।
हाँ,
नियम होंगे कुछ ऐसे कि
ऐसा नियम
पुरुषार्थ
नहीं, ऐसा है क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है या क्षपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। तो हम कहीं कहीं जाते हैं बाहर गांव, कहाँ गए थे हम, वो देउल गांव राजा छोटा गांव है, तो वहां प्रश्न किसी ने पूछा कि वो उपशम श्रेणी क्यों चढ़ते हैं फिर, क्या उनको मालूम नहीं वहां से गिरते हैं? तो वो बिचारे क्या कहते हैं उनको? देखो, क्षायिक वाले गिरने का अर्थ क्या है? क्षायिक तो सम्यक दर्शन है, तो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान के नीचे नहीं जाएगा। पंच क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव जो ग्यारहवें गुणस्थान में गया है, उसने तो चारित्र मोह का उपशम किया है, तो ग्यारहवें से दसवें, दसवें से नौवें, से आठवें से सातवें, नीचे क्रम से छठे तक आएगा, क्योंकि उपशम श्रेणी जो होती है वो अंतर्मूर्त के होती है और वो नियम से नीचे आता है। तो हमें क्या लगता है, बिचारे गिर गए? ये बिचारे नहीं है, वो तो महामुनि है, क्योंकि ग्यारहवें गुणस्थान तक का पूर्ण वितरागता का पुरुषार्थ हुआ है उनके। जैसे अरिहंतों की वितरागता होती है, वैसे उतनी उनकी वितरागता हुई है एक अंतर्मूर्त तक के लिए। ये कर्मों का उपशम होना करना है कि क्षय करना है, ये हम सोच समझ कर नहीं करते। हम तो अपने अंतरंग में लीन होते हैं, वहां कर्मों की जो यथायोग्य अवस्था होनी है वो होती है, उसमें भी बहुत सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। मैं पूछूं आपको, किसी ने अभी आगे की देवायु बांध ली है और वो अभी मुनिराज अपने अंतरंग में इसे दृढ़ता के स्थिर हो गए हैं कि श्रेणी मान ली उन्होंने, शपक श्रेणी मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? क्यों मान लेंगे और क्यों नहीं मान लेंगे? मैंने पहले ही बता दिया, उन्होंने आगे की आयु बांध ली है देवायु की, तो वो तो क्षपक श्रेणी मान ही नहीं सकते, आगामी आयु का बंद हो गया है ऑलरेडी उनके, तो वो क्षपक श्रेणी कैसे मानेंगे? क्षपक श्रेणी तो वो वन वे ट्रैफिक है, वो बारहवें में चले जाते हैं और वहां तो केवल ज्ञान होकर मोक्ष चले जाते। अभी आयु कर्म बांध लिया है तो आगे के वो क्षपक श्रेणी कैसे मान सकते हैं?
इतना करने के बाद
देखो देखो, भले वो हमें ऐसा लगता है इतना करने के बाद भी, परंतु जब वो उपशम श्रेणी भी मानते हैं तो उपशम श्रेणी चढ़ते हुए भी और उतरते हुए भी दोनों टाइम वो असंख्यात असंख्यात गुणा निर्जरा होती है, कर्मों की बहुत सारी निर्जरा हो जाती है। यानी हमें तो ऐसा लगता है ना, वो ऊपर चढ़ते चढ़ते समय वो निर्जरा होती होगी और फिर बिचारे नीचे गिरते, ऐसा नहीं है। एक बार चढ़ के उतरते हैं उपशम श्रेणी भी, तो उसमें सभी कर्मों की निर्जरा होती है, नॉट ओनली वो चारित्र मोहनी की। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय सभी जो कर्म है, सभी कर्मों की असंख्यात गुणा असंख्यात निर्जरा होते, बहुत बढ़िया काम होता है वहां पर भी। और बस मुनिराजों का तो यही है ना, तो ध्यान अवस्था में जाते हैं तो कभी श्रेणी भी चढ़ के उतरते हैं, तो उसका काल भी बहुत छोटा होता है। तो ये सहज अवस्थाएं क्या बनती है, वो तो केवल ज्ञान का विषय होता है और हम सोच समझ कर वो नहीं कर सकते हैं। आप कहते हमारा तो कोई नंबर ही नहीं, वहां ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो दौड़ के जाए पहला वो उसे नंबर लगाए। हम अपना पुरुषार्थ अपने में करते हैं तो सहज रूप से यहाँ वो अवस्था प्राप्त होती है। आपको पांचवें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ हो सकता है, आप ग्यारहवें गुणस्थान की क्यों सोचे, जो अभी इस समय नहीं हो सकता है। इस समय ने स्त्रियों को तो होगा ही नहीं, पुरुषों को हो सकता है, परंतु पंचम काल में वहां भी निमित्त बनता है कि जो ऊपर के तीन सहनन वाले हैं उन्हीं को श्रेणी का पुरुषार्थ हो सकता है। पंचम काल में ऐसा कोई जीव जन्मता नहीं कि ऊपर के तीन सहनन वाले, नीचे के तीन सहनन वाले अभी इस काल में होते हैं तो उनके सातवें गुणस्थान के आगे वाला जो स्थिरता वाला पुरुषार्थ उनसे नहीं बनता। तो सहनन तो छह होते हैं, ऊपर के ने वज्र ऋषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन, इसको कहेंगे ऊपर के तीन। और नीचे के तीन यानी अर्ध नाराज कीलित और असंप्राप्ता सुरपाटिका सहनन, ये तीन सहनन जो पाए जाते हैं तो ये पंचम काल में नीचे के तीन सहनन होते हैं, उन जीवों को ये श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं होता। अब कोई विधेय, जैसे यहां से कुमकुंदा आचार्य विधेय क्षेत्र में गए थे, तो क्या वहां जाकर उनको हो सकता था श्रेणी का पुरुषार्थ? क्या प्रश्न पूछा मैंने, क्यों नहीं हो सकता था? यहां जन्मे हुए हैं ना हुए, अभी मान लेते उल्टा कुछ हो जाए, विदेह क्षेत्र में कोई मुनिराज अभी ध्यान अवस्था में, हम देखते कि कोई पूर्व जन्म का वैरी देव है उठाकर कहीं भी पटक देता है और वहां से लाया और यहां पटक दिया आपके इसमें वॉशिंगटन में, तो यहां वे श्रेणी भी मान सकते और यहां से मोक्ष भी प्राप्त कर सकते। ये पंचम काल उनके लिए बाधा नहीं है, ना कोई क्षेत्र उनके लिए बाधा है। ये जो उनके जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं कि कौन से क्षेत्र में जन्मने वाले के कौन से सहनन होते हैं, कहां तक होते हैं, क्या होते हैं, उसका उसके साथ निमित्त बनता है। फिर भी हम कहने के लिए कहते ना, ये पंचम काल है इसलिए नहीं हो रहा है, क्या करे, यानी हमारा सारा दोष किस पर हम थोपते हैं, काल के ऊपर। तो हमारे जितना योग्य पुरुषार्थ है क्या उतना हम कर रहे हैं, ऐसा हम आपसे पूछना, अपने आप से, आपसे यानी आपसे नहीं, दूसरों से नहीं, अपने आप से। हले, ये जो सारे कर्णानुयोग के नियम जाने जाते हैं, कर्णानुयोग को पढ़कर कर्मों की अवस्था लाई नहीं जा सकती, वो तो सहज होती है। अंतरंग में जो स्थिरता होती है तो कर्मों में क्या क्या बातें बनती है, कौन से कर्मों का उपशम होता है, कैसे होता है, क्या होता है, ये जान सकते हैं। कर्णानुयोग के द्वारा जानते हैं तो दृढ़ता आती है, हमें मालूम है कि तत्व विचार करने पर ये बातें होती ही है, तो उसमें कोई शंका रहती नहीं है, कोई उसमें संदेह नहीं रहता, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहता। और हम मालूम है कि तत्व विचार करने पर ये बातें अवश्य होती ही है, और उतने से ही होती है, क्योंकि हमें तो लगता है कुछ व्रत आदि करेंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे अपने गोल तक, ऐसा लगता है ना, तो क्या करें, हमसे व्रत नहीं होते इसलिए, ऐसा नहीं है। तत्व विचार की मुख्यता पहले में पहले है, औषमिक सम्यक तो होता है, तो ये पांच लब्धि पूर्वक कैसे होता है उसका अपना विषय तो है नहीं है, परंतु जो तत्व विचार करने वाला होता है तो उसको ये बातें अवश्य होती है, तो उसके भी औषमिक सम्यक की प्राप्ति होती है। अपना विषय तो
जब जो क्षायिक सम्यक वाला जीव जब श्रेणी मानता है और जब वो चारित्र को उपशम करता है, तभी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतरायकरम की क्षायोपशमिक।
हाँ, आपका प्रश्न है, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि है और उपशम श्रेणी में वो चारित्र मुनि का उपशम कर रहा है, तब ज्ञान दर्शन वीर्यादि की क्या अवस्था है, तो उसका क्षायोपशमिक भाव है, क्योंकि हमने क्षायोपशमिक भाव 12वें गुणस्थान तक देखा था। तो क्योंकि उनको क्षायोपशमिक ज्ञान चल रहा है, कौन सा ज्ञान चल रहा होगा उनका, कौन सी पॉसिबिलिटी है, उपशम श्रेणी मानने वाले क्षायिक समय दृष्टि हो या उपशम समय दृष्टि हो, तो उनके कौन कौन से ज्ञान हो सकते हैं।
हाँ,
मति श्रुत अवधि और मन परे, बराबर है। देखो ऐसा नियम है, मन परे ज्ञान और औपशमिक सम्यक्त्व एक साथ नहीं हो सकता, बहुत सारे ऐसे नियम है, जैसे चार बातें एक साथ नहीं होती है, ये परिहार विशुद्धि संयम, मन परे ज्ञान, ये औपशमिक द्वितीय उपशम सम्यक्त्व को या प्रथम उपशम,
और
क्षायिक सम्यक तो हो, हाँ, तो हो सकता है,
मन परे ज्ञान हो सकता,
हाँ, मन परे ज्ञान हो सकता है, औपशमिक सम्यक तो द्वितीय उपशम सम्यक तो के साथ नहीं होता है। ये तो बहुत डिटेल में ऐसी बातें होती है,
जब मन परे ज्ञान जब दीक्षा लेते हैं तब मन परे ज्ञान होता, वो अयंतो जो सिद्ध होने वाले उसको होता है।
आपका प्रश्न है, जो अरिहंत होने वाले है क्या उन्हीं को होता है
मन परे ज्ञान, जब दीक्षा लेते
तो? दीक्षा लेते तो सभी को नहीं होता, एक बात, क्योंकि किसी भावलिंगी संत को हो सकता है, सबको नहीं होता, एक बात हुई ना। और दूसरी बात, आपका प्रश्न है क्या मन परे ज्ञान वाले सभी अरिहंत होते हैं, ऐसा ही प्रश्न है ना आपका, तो उसमें भी वो रुजुमति विपुल मति वाले जो है, वो विपुल मति वाले तो वो तो उनका गिरता नहीं, वो तो निश्चित रूप से उसी भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं, परंतु रुजुमति वाले हो सकते हैं उनका एकाध भव बाकी है, अब फिर देव में चले जाएंगे, फिर आके मनुष्य होकर मोक्ष भी चले जा सकते हैं, हो सकता है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, भावों की चर्चा है ना। देखो कर्णानुयोग का विषय ऐसा है कि उसमें हमें तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, फिर भी अपना मूल विषय नहीं छूटे, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यहां तो हमने भावों की चर्चा की है, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पर पुस्तक के आधार से बढ़ेंगे हम। ये पांच भावों की व्याख्या ने परिभाषा यहां दी है, देखो क्या कहते हैं, अपना जहां सूत्र लिखा है उसके अर्थ के नीचे पहले नंबर पर है औपशमिक भाव। हम पढ़ते हैं पुस्तक में से, गुजराती वाले भी गुजराती में से देख लेना। आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा अशुद्धता का प्रकट न होना अर्थात दब जाना। औपशमिक सम्यक्त्व की बात पहले हम देखेंगे तो आत्मा का कौन सा अशुद्ध भाव दब रहा है यहाँ पर? हाँ, मिथ्यात्व, क्योंकि औपशमिक सम्यक्त्व हो रहा है ना, सम्यक्त्व नाम का शुद्ध भाव प्रकट हो रहा है और मिथ्यात्व नाम का अशुद्ध भाव दब रहा है। कुछ काल के लिए मिथ्यात्व भाव नहीं हो रहा आत्मा में, अनादि से ही हर समय मिथ्यात्व 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 की पर्याय चली आ रही थी। अब कुछ काल के लिए, एक अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात्व नहीं होगा, वहां सम्यक्त्व प्रकट हो रहा है। कर्मों में भी वो उपशम अवस्था हो रही है दर्शन मोह की और अनंतानुबंधी की, तो ये अशुद्धता का प्रकट नहीं होना उसी को यहाँ कहा है औपशमिक भाव।
अपने प्रश्नोत्तर है ना, उसमें ऐसा लिखा है कि प्रशस्त उपशम और अप्रशस्त उपशम, दो बात लिखी है तो इसमें बैठती है वो बराबर
आपका कहना है। गुणस्थान की पुस्तक में आप निकालना पेज नंबर, सबके पास है ना गुणस्थान की पुस्तक, तो प्रश्न इन भाई का ऐसा है, आप पेज नंबर
22-23,
हाँ प्रश्न जो है शुरू में 22 और 23 नंबर का जो प्रश्न है,
उपशम किसे कहते हैं?
तो देखो वहाँ दो ऐसा प्रश्न है, निकला सब, सबको मिल गया 22 नंबर का, पहले में पहले 21 नंबर का है ना उसमें प्रशस्त, अभी पुराने में मेरी 32 अलग है, आप में किस में पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या
33 पेज 33
एडिशन अलग अलग होती है, अलग अलग
दूसरा
नहीं प्रश्नोत्तर गुणस्थान में
33
महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। देखो प्रश्न सुनना, आपके ख्याल में आएगा, आपको मिल जाएगा उसमें। प्रश्न ऐसा है कि प्रशस्त उपशम किसे कहते हैं, मिला ना?
जूनी बुक में
20 में तो उपशम किसे कहते हैं लिखा है,
हमारे 21 में है।
बट जो कुछ है हम प्रश्न पढ़ते हैं, आप अपने अपने किताब में उसको देखना नंबर, इट डजंट मैटर। उपशम किसे कहते हैं तो वहां कहते हैं परिणामों की विशुद्धि से उदय में आने योग्य कर्मों की शक्ति का प्रकट न होना, वह उपशम है। यानी जो कर्मों की शक्ति प्रकट नहीं होनी, वो दबी रहनी, सत्ता में से तो कर्म नष्ट नहीं होते हैं, परंतु अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, कुछ काल के लिए उनका उदय रुक जाता है, उसको कहते हैं उपशम होना। अथवा कर्म जो उदय में नहीं आ सकते सत्ता में रहे वह उपशांत कहलाता है, और इसके प्रशस्त और अप्रशस्त दो भेद हैं। तो प्रशस्त किसे कहना और अप्रशस्त किसे कहना, आगे कहते हैं अधकरणादि द्वारा उपशम विधान से, अनंतानुबंधी की बात नहीं है परंतु अन्य जो मोहनीय कर्म की उपशमना होती है, उपशमना होती है, उसे प्रशस्त उपशम कहते हैं। ये जो प्रशस्त उपशम है वो ओनली इन मोहनीय कर्म होता है। तो उसमें क्या होता है कि उन कर्मों का उदय कुछ काल के लिए रुक जाता है, उसमें अधकरणादि के द्वारा ने अधकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के द्वारा पहले में पहले उनमें गैप तैयार होती है, अंतरकरण होता है और फिर उसमें उपशम होता है, उसको कहते हैं प्रशस्त उपशम। अंतरकरण यानी गैप तैयार होना, दर्शन मुनि का लगातार उदय है, उन निषेकों के कुछ परमाणु नीचे आते कुछ ऊपर चले जाते हैं और वो परमाणुओं में ये जो लगातार जो उदय रूप निषेक है उन्में गैप तैयार होती है।
अभी समय दर्शन नहीं हुआ,
अभी नहीं हुआ है, उसके पहले समय दर्शन होने के पहले अंतरकरण होता है, उसमें वो दर्शन मुनि की जो लगातार लाइन लगी थी उसमें गैप तैयार हुआ, वो गैप में गैप पहले तैयार होती है और गैप के ऊपर वाले जितने सत्ता में कर्म परमाणु पड़े हैं वो दब जाते हैं, उदय में नहीं आ सकते, उसका उपशम किया जाता है। और जब वो गैप में जीव आता है, नीचे के निषेक चले जाते हैं, तब यहां जीवों को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। वहां जो कर्म उपशमित हुए हैं उसको कहते हैं प्रशस्त उपशम और उसे ही अंतरकरण रूप उपशम कहते हैं।
तो वो एक से चार गुणस्थानों में जो होता है वो
नहीं, ये प्रशस्त उपशम जो है चौथे गुण स्थान में होगा,
चौथा
हाँ, या वो द्वितीय उपशम के काल में भी हो सकता है अंतरकरण रूप उपशम। अब हम आगे बढ़ते, आगे वाला प्रश्न, अप्रशस्त उपशम किसे कहना? तो अप्रशस्त उपशम में वहां कर्मों में कोई गैप भी कुछ नहीं होती है। क्या होता है, बस वो उदय में नहीं आते, पड़े रहते, उदय में उस रूप से नहीं आते। जैसे अभी सम्यक दर्शन हो गया, अभी ये जो हम औपशमिक सम्यक तो हो गया, तो उसमें गैप तो दर्शन मोहनीय में हुई थी, अनंतानुबंधी तो गैप के काल में भी अनंतानुबंधी के परमाणु तो थे, परंतु वो अपने रूप से उदय में नहीं आ रहे। उदय में आते आते वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन रूप से उदय में आते हैं, तो उनका उदय नहीं होना उन रूप से, उसको कहते हैं अप्रशस्त उपशम। क्षोपशम की जब हम परिभाषा देखेंगे गुणस्थान के आधार से, तब उसमें भी ये जो ज्ञानावरणादि का जो है सर्वघाती का, वो अप्रशस्त उपशम कहलाता है। अभी हम उसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे।
आप संक्रमण हो गया,
संक्रमण यानी उसको अप्रशस्त उपशम कहते हैं, हाँ, और जब उदय रूप हो जाएंगे तब अन्य कर्म रूप से होकर उदय में आते हैं, क्योंकि जो परमाणुओं की अभी जो स्थिति पूरी हुई है वो खिरेंगे तो सही, परंतु अनंतानुबंधी रूप से तो अभी उपशम के काल में नहीं खिर रहे, बाद में उनका उदय आ जाएगा तो जीव फिर नीचे के गुण स्थानों में गिर जाएगा।
हम
अच्छा बुरा इसमें कुछ नहीं होता है, जो होता है उसको बताया जाता है। अन्य अन्य कर्मों में अन्य अन्य बातें बनती है, अप्रशस्त उपशम तो सभी कर्मों में ऐसे बनते रहता है, कभी वो उदय में नहीं आ रहे हैं, पड़े हैं, तो उसको अप्रशस्त उपशम कहते हैं। जो क्षोपशम में जो क्षय और उपशम कहा जाता है, वहां जो उपशम शब्द आता है वो अप्रशस्त उपशम के लिए आता है। जब उसकी परिभाषा यहां पर ली जाएगी तो आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी, बिल्कुल आपका समाधान होगा। कुछ दिन के बाद इसी प्रश्न का उत्तर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, क्योंकि करणान योग का विषय ऐसा है कि बहुत आगे की स्टेप, जैसे आप गणित सॉल्व कर रहे हैं तो मान लेते कि एक स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं, तो हम एकदम चौथी दसवीं लाइन पर जंप करेंगे तो कैसे समझ में आएगा, ख्याल है ना? तो क्रम से हम समझते जाएंगे और आपके समझ में आ जाएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये पांच भावों की जो परिभाषा चल रही है, औपशमिक भाव को हम पढ़ रहे थे, आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा, ये महत्व की बात है। औपशमिक भाव ऐसे ही अपने आप प्रकट हो जाए, औपशमिक सम्य दर्शन हो जाए सोते सोते नींद में, अरे मुझे ऐसा लगता है कल रात नींद में मुझे सम्य दर्शन हो गया, ये तो है उसकी कंडीशन है, जागृत अवस्था में ही होता है, सोते सोते नहीं होता है, और ना ही वो कर्मों में ऐसे अपने आप भाव प्रकट हो गए, उसका उपशम हो गया और यहां सम्य दर्शन प्रकट, ऐसा तीन काल में नहीं बनता। जब जब होता है तो जीव के पुरुषार्थ द्वारा ही होता है। तो कहते हैं आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा अशुद्धता का प्रकट न होना अर्थात दब जाना, तो आत्मा ने कर्मों को उपशमाने का पुरुषार्थ किया क्या नहीं किया? मेरा प्रश्न सुन लो सरलाबेन, फिर पूछना नहीं कि क्या प्रश्न था। मैंने पूछा आत्मा ने कर्मों को उपशमाने का पुरुषार्थ किया क्या नहीं किया, बोलो। तो काय का किया?
अपने आप में।
बहुत अच्छा, हाँ। कर्मों में जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता, पुरुषार्थ जीव के वीर्य गुण की पर्याय है, वो जीव के अपने क्षेत्र में होगी। जीव का क्षेत्र छोड़कर, उसके प्रदेश छोड़कर बाहर तो उसका पुरुषार्थ नहीं चलता है, तो जीव का पुरुषार्थ जीव में होता है, ना शरीर में होता है ना कर्म में होता है। तो शरीर की क्रिया करना भी जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं है, और कर्म में कुछ उथल पुथल करना भी जीव का वो कर ही नहीं सकता है, वो उसका पुरुषार्थ नहीं है। जीव अपने में स्थिर होता है, एकाग्र होता है, अपना स्वरूप समझता है, तो कर्मों में अपने आप ये उपशमादि अवस्थाएं होती है। तो कहते जीव के पुरुषार्थ द्वारा कथन हो सकता है कि जीव ने कर्मों को उपशमित किया? करणान योग के कथन तो निमित्त की भाषा में ही होते हैं, वहां कहेंगे कि अरंत ने चार घाती कर्मों का नाश किया, अक्षय किया, तो जीव कर्मों का क्षय करके इस अवस्था में पहुंचा, एक कहने की बात है, परंतु कोई कर नहीं सकता। इसलिए यहां क्या कहते हैं, आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा अशुद्धता का प्रकट न होना अर्थात दब जाना, आत्मा के इस भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। यह जीव की एक समय मात्र की पर्याय है। आप कहेंगे क्या औपशमिक समय तो एक समय के लिए होता है कि नहीं होता? औपशमिक समय दर्शन का काल मिनिमम भी अंतर्मूर्त होता है, परंतु हर समय वो औपशमिक 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 भाव लगातार एक अंतर्मूर्त तक रहता है, तो हम कहेंगे औपशमिक समय तो एक अंतर्मूर्त काल तक टिका है, बाद में वो औपशमिक हो जाए या अन्य भी उसके ऑप्शन से वो हो जाएंगे। परंतु एक एक समय की पर्याय करके असंख्यात समयों में वो अंतर्मूर्त होता है, फिर भी क्या कहा, वो एक समय का भाव है क्योंकि ये पर्याय रूप भाव है। ये जो चार भाव देखे हैं उसको हमने पर्याय रूप भाव कहे थे। उसका काल कितने होगा, अभी औपशमिक का तो हमने देखा एक समय का, क्षायिक भाव कितने समय का होगा? हाँ, बहुत अच्छा, ये चारों ही पर्याय रूप भाव है तो ये तो एक समय वाले हैं। और पारिणामिक भाव अनादि अनंत, क्योंकि कायम टिकने वाला भाव है वो जीव का, वो पर्याय रूप भाव नहीं है, स्वभाव रूप भाव है। देखो आत्मा के
औपशमिक भाव वाला एक जो आपने बोला ना, इसका एक समय का पर्याय समय के उसके बाद वापस मिथ्यात्व हो सकता है।
हाँ, आप जो एक समय में मिथ्यात्व तो नहीं हो सकता, औपशमिक समय तो एक समय में औपशमिक हुआ, दूसरे समय भी औपशमिक रहेगा, तीसरे में भी औपशमिक रहा, मिनिमम पॉसिबल अंतर्मूर्त तो औपशमिक रहेगा ही है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। अंतर्मूर्त यानी अभी यथायोग्य अंतर्मूर्त, ये 48 मिनट वाला अंतर्मूर्त नहीं समझना। मुहूर्त 48 मिनट को एक मुहूर्त कहते हैं, मुहूर्त में एक समय भी कम कर दो तो उसको अंतर्मूर्त कह सकते हैं हम, परंतु मिनिमम अंतर्मूर्त होता है आवली प्लस एक समय, वहां से लेकर प्लस दो समय प्लस तीन समय, ऐसे दो आवली चार आवली संख्या आवली लाखों आवली का भी पूरा अंतर्मूर्त हो जाए। परंतु हमें तो क्या कहना यहां कि जो अंतर्मूर्त है यानी मुहूर्त के अंदर, ये कौन सा अंतर्मूर्त है, यथा योग्य अंतर्मूर्त है, क्योंकि अंतर्मूर्त के भी भेद बहुत है। असंख्यात भेद है ना, जैसे लखपति के देखे अपने, वैसे अंतर्मूर्त के भी बहुत सारे असंख्यात भेद है, इसलिए वो केवल ज्ञानी ने जो अंतर्मूर्त देखा है वैसे। तो आपका प्रश्न था कि औपशमिक सम्यक्त के बाद लगातार अंतर्मूर्त तक औपशमिक सम्यक्त रहा, उसके बाद मिथ्यात्व तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, परंतु किसी के क्षोभम सम्यक्त भी हो सकता है। कोई औपशमिक समय के पहले ही गिरकर वो आपका दूसरा मिथ्यात्व, दूसरे गुणस्थान का नाम क्या देखा आपने बोर्ड पर, नहीं है असाधन सम्यक्त, उसमें भी जा सकता है। और कोई जो औपशमिक सम्यक्त्व का काल पूरा करने पर तीसरे सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान में भी जा सकता है, वो कैसे जाएगा क्या है वो आप बाद में देखना, आगामी आकर्षण वो। देखो क्या कहते हैं, यह जीव की एक समय मात्र की पर्याय है, वह एक एक समय करके अंतर्मूर्त तक रहती है, लिखा है ना यहाँ पर, एक एक समय की पर्याय भिन्न भिन्न है, फिर भी अंतर्मूर्त तक वो लगातार होती है, तो हम कहेंगे औपशमिक सम्यक्त्व का काल एक अंतर्मूर्त है। किंतु एक समय में एक ही अवस्था होती है, क्योंकि हमने देखा है कि पर्याय एक समय मात्र की होती है, केवल ज्ञान वाली पर्याय भी एक समय की होती है, और एक 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 समय तक रहकर कितने कितने काल तक रहती है, कितने अंतर्मूर्त, अनंत काल तक रहती है। हाँ। देखो, और उसी समय ने औपशमिक समय तक के काल में, उसी समय आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर जड़ कर्म का प्रकट रूप फल जड़ कर्म में न आना सो कर्म का उपशम है। देखो कैसी बात है, यहां जीव का पुरुषार्थ चल रहा है तो वहां तो कर्म सत्ता में पड़े थे तो उदय में आ जाते, परंतु यहां जीव ने पुरुषार्थ किया। कौन सा पुरुषार्थ किया, वो तत्व विचार में तद्रूप होकर लीन हो गया और उसके शुद्ध भाव यानी सम्यक तो प्रकट हुआ, तो वहां कर्मों में अपने आप उपशम वाला जो अवस्था होती है वो प्रकट हुई, यानी उसका फल देने रूप वहां अवस्था नहीं रही, तो उसको कहते हैं कर्म में भी वो कर्मों का उपशम हो गया। तो कहते हैं उसी समय आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर, देखो निमित्त एक ही समय में होने वाले दो द्रव्यों की दो भिन्न पर्याय, एक में तो कार्य हुआ है और एक को हम निमित्त कह रहे हैं। यहां जीव में सम्यक तो प्रकट हुआ है और उसके निमित्त से वहां कर्मों में उपशम हो गया है। जड़ कर्म का प्रकट रूप फल जड़ कर्म में न आना सो कर्म का उपशम है। ये अंतर्मुहूर्त तक उसका उदय रूप फल नहीं मिल रहा है, हाँ, तो उसको उपशम कहते हैं। हाँ, आपका प्रश्न है उस समय कर्म खिर गए के रहे, तो उस समय वो सत्ता में ही पड़े रहे हैं, उदय में नहीं आ रहे, उसको कहते हैं उपशम। यानी उसको अंतर्मुहूर्त तक ऐसी कंडीशन हो गई उसकी कि वो फिर कर उदय में नहीं आ सकते, जहां है वहीं पर स्थित रह जाते हैं, उसको उपशम कहते हैं। अब क्षायिक भाव की परिभाषा देखते हैं। पहले तो परिभाषाएं देखेंगे, फिर उसके संबंध में और भी चर्चा होगी। तो क्षायिक भाव कहते हैं आत्मा के पुरुषार्थ से, देखो ये पुरुषार्थ की ही बात चल रही है, आत्मा के पुरुषार्थ से किसी गुण की शुद्ध अवस्था का प्रकट होना सो क्षायिक भाव है। यहां सभी गुणों की एक साथ नहीं कहा है, क्योंकि प्रत्येक गुण की शुद्ध अवस्था कब प्रकट होगी वो उसका क्रम अलग अलग है, उसके अपने में निश्चित है। अभी हमने देखा श्रद्धा गुण की जो शुद्ध अवस्था प्रकट होना, पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होना, कायम के लिए रहना, उसको हम क्षायिक भाव कहेंगे, क्षायिक सम्यक दर्शन कहेंगे। वो तो चौथे गुण स्थान में भी प्रकट हो सकता है, किसी को पांचवें में, किसी को छठे में, किसी को सातवें में प्रकट होता है, तो चलता रहता है कायम के लिए क्षायिक सम्यक दर्शन। उसकी बिगिनिंग कहां हो सकती है, तो चौथे में, पांचवें में, छठे में या सातवें में, बिगिनिंग ऑफ क्षायिक सम्यक दर्शन। वो प्रोसेस जो अंतर्मुहूर्त में क्षायिक पना प्राप्त हो जाता है, वो कहां प्राप्त होता है, किस जीव के प्राप्त होता है, तो पहले में पहली कंडीशन है कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए। भोग भूमि में क्षायिक सम्यक दृष्टि मरकर जा सकता है, परंतु वहां का जीव क्षायिक सम्यक्त्व की शुरुआत नहीं कर सकता, उसको प्रकट नहीं कर सकता, उसकी बिगिनिंग जिसको कहते हैं उसका निष्ठापन तो समाप्ति को कहते हैं, उसकी शुरुआत नहीं करता, प्रारंभ नहीं कर सकता। और ये देव और नारकी भी उसका प्रारंभ नहीं कर सकते, तो मनुष्य होना चाहिए, कर्म भूमि का मनुष्य, उसके लिए भी एक आवश्यक निमित्त है, वो केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में ही कर सकता है, अन्यत्र नहीं होता, क्योंकि वैसा ही उसको सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। अब ये कौन करेगा, तो क्षौपशमिक समय दृष्टि ही क्षायिक समय दृष्टि होगा। कोई मिथ्या तो में से डायरेक्ट क्षायिक समय दृष्टि नहीं हो सकता है, और कोई उपशम में से डायरेक्ट क्षायिक नहीं हो सकता, तो उपशम में से क्षौपशम समय दृष्टि होगा और फिर क्षौपशम में से वो क्षायिक होगा। ऐसे उसकी
उपशम वाले क्षायिक नहीं हो सकते,
उपशम वाले में से क्षौपशम होगा और क्षौपशम में से क्षायिक होगा, क्योंकि उपशम ने तो उपशमित किया है, अभी उपशम छूट जाएगा, फिर वो विशिष्ट कर्मों की उदय शुरू होगा और फिर बाद में उसका क्षय हो जाएगा। देखो क्या कहते, आत्मा के पुरुषार्थ से किसी गुण की शुद्ध अवस्था का प्रकट होना सो क्षायिक भाव है। तो आत्मा के श्रद्धा गुण में एक क्षायिक भाव तो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थान से शुरू हो सकता है, फिर आगे वो रहता है। और क्षायिक ज्ञान वाला जो क्षायिक भाव है वो हमने कहां प्रकट होता है देखा, क्षायिक ज्ञान कहां प्रकट होता है, कौन से गुणस्थान में, हाँ, तेरहवें गुणस्थान, पहला समय उसका, तो वहां केवल ज्ञान यानी क्षायिक ज्ञान प्रकट होता है। यह भी जीव की एक समय मात्र की अवस्था है, अभी हमने देखा था चारों ही जो भाव है, पहले चार कौन से, औपशमिक, क्षायिक, क्षौपशमिक और औदयिक, यह पर्याय रूप भाव है, वो समय मात्र के लिए, समय मात्र की अवस्था है, एक एक समय करके वह सादी अनंत रहती है। देखो ये सादी का अर्थ क्या है, स प्लस आदि, सादी का शादी नहीं हो, सादी, हाँ। तो ये चार प्रकार से कालों को बताया जाता है। जब हमने अभी कहा कि एक समय की पर्याय होती है, अभी यहां क्षायिक भाव की अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। कहीं भी हमको किसी को बिगिनिंग भी है और एंड भी है, आदि भी है और अंत भी है, तो उसको कैसे समझाएंगे? हाँ, सादी और शांत, सादी शांत, उसको आदि भी है और उसको अंत भी है, तो उसको कहेंगे सादी शांत है। अब कोई ऐसा भाव है अनादि से चला आ रहा है, जैसे मिथ्यात्व अनादि से एक एक समय करके आया है, तो अनादि का है, और अभी उस जीव को सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, तो उस मिथ्यात्व को क्या कहेंगे? अनादि शांत, अनादि से था और उसका अंत हो गया, स आदि, सॉरी अनादि, अनादि यानी जिसको आदि नहीं है, अनादि और स अंत यानी अंत सहित है, उसको अनादि शांत कहेंगे। अभी जो अभव्य जीव है उनका भी मिथ्यात्व अनादि से है, परंतु वो अनंत काल तक कभी सम्यक्त्व नहीं प्राप्त कर सकते, अभव्य है ना, तो उनको कहे कैसे कहेंगे, उनका मिथ्यात्व कैसा है? अनादि अनंत। अब जीव ने किसी केवल ज्ञान प्राप्त कर किया है, महावीर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, तो उनका ये केवल ज्ञान कैसा है? सादी अनंत, क्योंकि उसको बिगिनिंग है ना, और वहां से लेकर अनंत काल तक केवल ज्ञान चलेगा, तो वो सादी अनंत कहलाएगी। ऐसे सादी शांत, सादी अनंत, अनादि शांत और अनादि अनंत, ऐसे चार प्रकार से हम अलग अलग भावों को बता सकते हैं। ये पारिभाषिक शब्द है ना, उसका अर्थ हमें ख्याल में आता है। एक पर्याय तो होती एक ही समय की है, परंतु प्रवाह रूप से उसको समझाना है तो इस तरह से समझा सकते हैं। ये पारिणामिक भाव कैसा होगा? बढ़िया नहीं? हमको आदि और अंत में बताना है, अनादि अनंत भाव है। हाँ।
बढ़िया है।
बढ़िया है, वही वो है, उसको स्वीकार नहीं किया है, वो है, उसको नहीं कहीं लाना है, वो पर्याय रूप नहीं है, वो तो हमारा स्वभाव भाव है, तो उसको कहीं, हाँ, उसको कहीं लाना नहीं है, तो कौन से द्रव्य में होगा पारिणामिक भाव? जीव द्रव्य में। हाँ? वो अकेला ही स्वभाव भाव वाला द्रव्य है ना। देखो सभी में अपना अपना पारिणामिक भाव है, परंतु जीव का जो है ना उसको हम परम पारिणामिक भाव कहते हैं, ज्ञायक भाव है, हमारा अपना है ना, तो परम पारिणामिक है, परंतु प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना पारिणामिक भाव है, क्योंकि स्वभाव भाव हर द्रव्य में होता है, छह द्रव्य में होगा। अब कहते देखो, एक एक समय करके वह सादी अनंत रहती है, कौन सी? ये अवस्था। तथापि एक समय में एक ही अवस्था होती है, सादी अनंत, अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाव वाले। ये पूरा वाक्य पढ़ेंगे फिर उसका एक एक कार्य देखेंगे क्या होता है। सादी अनंत, ये किसका सब विशेषण चल रहा है? तो केवल ज्ञान का। सादी अनंत, अमूर्त, अतीन्द्रिय स्वभाव वाले, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य युक्त फलरूप अनंत चतुष्टय के साथ रहने वाली परम उत्कृष्ट क्षायिक भाव की शुद्ध परिणति, जो कार्य शुद्ध पर्याय है, उसे क्षायिक भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां अनंत भगवान का वर्णन है। अरियंत भगवान में अनंत चतुष्टय होते हैं, सुना है कभी? हाँ हाँ, जोर से जोर से।
अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो, सिरताज के काम तुम।
हाँ, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, तो ये अनंत चतुष्टय के धनी हो ऐसा हम कहते हैं, तो ये अनंत चतुष्टय कौन से है? हाँ, वो नहीं मालूम।
अनंत वीर्य, अनंत,
अभी अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख है केवल, यानी भगवान के अरहंतों की हम स्तुति करते हैं, तो ये भगवान आप इसके धनी हो, ये आपके गुण प्रकट हुए हैं, तो ये अनंत चतुष्टय है। चार बातें हैं ना, चार बातों को कहते चतुष्टय, चारों का समूह है, और वो कितना है? अनंत, यानी जो स्वभाव में जो अनंतता है वो पर्याय में प्रकट हुई है। हम भी स्वभाव से अनंत चतुष्टय रूप है, परंतु वो पर्याय में उसका लक्ष्य करेंगे तो पर्याय में प्रकट होगा। तो उनके तो पर्याय में प्रकट है, इसलिए उसको कहते हैं अनंत चतुष्टय के धनी है। तो यहां कहते हैं, देखो फिर इसको पढ़ते हैं, ये केवल ज्ञान कैसा है, सादी अनंत है। अभी अभी हमने देखा था कि महावीर भगवान के जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है उसके आदि है, बिगिनिंग है, जिस समय उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, अनंत अवस्था प्राप्त की, वहां से अभी अनंत काल तक उनके अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान चलेगा, केवल ज्ञान। तो ये सादी अनंत है, अमूर्त है, आत्मा अमूर्तिक है तो उसके गुण भी अमूर्तिक है, बराबर है ना कि नहीं? क्या कहा? आत्मा अमूर्तिक है तो उसके गुण भी अमूर्तिक है, वो अमूर्त है और अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। ये ज्ञान है वो अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय इंद्रियातीत है, इंद्रियों के द्वारा वो नहीं जानते हैं, तो अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जाता है। ऐसे जो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल युक्त, वीर्य युक्त, फलरूप, अनंत चतुष्टय, ये चारों को मिलकर यहां अनंत चतुष्टय कहा है। ये जो अनंत चतुष्टय के साथ रहने वाली परम उत्कृष्ट क्षायिक भाव की शुद्ध परिणति, क्या कहना चाहते हैं? एक उत्कृष्ट क्षायिक भाव यहां है, क्षायिक सम्यक तो चौथे गुण स्थान में होता है, परंतु यहां पर क्षायिक ज्ञान ही हुआ है, क्षायिक दर्शन हुआ है, अकेले वीर्य का नाम लिया है, परंतु दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य ये सभी क्षायिक रूप से प्रकट हुए हैं। तो यहां सभी क्षायिक भाव नौ के नौ प्रकट हुए हैं, तो उसको उत्कृष्ट क्षायिक भाव कहा है। ये जो यहां पर्याय चल रही है, शुद्ध परिणति है, जीव का जो शुद्ध भाव है यहां पर, उसको कहा है कार्य शुद्ध पर्याय। ये जो भाषा अटपटी होती ना, हमें लगता है क्या बात बता रहे, हमें कुछ नहीं समझ में आता है। तो कार्य शुद्ध पर्याय यानी उनकी जो पर्याय है वो शुद्ध रूप से हुई है, कार्य यानी पर्याय। तो ये कार्य कैसा हुआ है? अनंत चतुष्टय रूप शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, उसे क्षायिक भाव भी कहते हैं। और उसी समय आत्मा का पुरुषार्थ का निमित्त पाकर कर्मावरण का नाश होना सो कर्म का क्षय है। यहां कर्मों का पूर्ण नाश पाया जाता है, वो सत्ता में भी नहीं है। उदय का होना तो बात कोई पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सत्ता में से मूल से नाश हो जाता है, कर्म के आवरण नष्ट हो जाते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय का तो पहले ही नाश हुआ है, और यहां अंतराय भी नाश हो जाता है और क्षायिक भाव प्रकट होता है। ये उसकी चर्चा है कि आत्मा में क्षायिक भाव प्रकट है तो सामने कर्मों का भी क्षय पाया जाता है। समय हुआ है, अभी यहां ही रुकते हैं हम, अन्य जो तीन भाव है उसकी चर्चा हम कल करेंगे। बोलो चौबीसों भगवान की जय।